फिर नेक्स्ट है बीमारों की ये आदत करने वालों के लिए, तिरमिजी 969। चलिए यहाँ रुकें जरा सा। क्या हमारे शहर में कोई बीमार है? होगा ना। नियत कीजिए इन 3 दिनों में किसी ऐसी सिस्टर या जो भी आपके इर्द गिर्द लोगों में है उनको विजिट कीजिए, और जाकर अच्छे तरीके से कुछ ऐसी चीज लेकर जाएं कि जो उनको फायदा दे। कोई अच्छी दुआओं की बुक, कार्ड जिसमें बीमारी की दुआएं हैं, और फिर किसी तरह वहां बैठे बैठे उनके फोन पर आप भी कोई ऐसी गैजेट डाला है कि वो भी इस चीज से फायदा उठाए। मैं कहती हूँ अगर सिर्फ हॉस्पिटल्स का कंट्रोल हो ना हमारे हाथ में, 80% मरीज वैसे ही ठीक हो जाए इतनी कड़वी दवाइयां और ऑपरेशन गुजरने के बजाय। बजाय के मरीज तो टूटा होता है, वो तो जिंदगी और मौत के बीच में लटक रहा है, उनको वहां अल्लाह से जोड़िए। हमारा दुख की बात के उन जगहों पे भी टीवी स्क्रीनों पे वो अजीबो गरीब चीजें देख रहे होते हैं, तो बहरहाल ये काम कीजिए, किसी की आदत करें और फिर उनको ये मैसेज दें। फिर नेक्स्ट, सदका करने वालों के लिए 2 फरिश्ते रात को दुआ करते हैं, ए अल्लाह देने वाले को और ज्यादा दे। सुभान अल्लाह। बुखारी 1442 नंबर। और इस बात की मैं गवाही दे सकती हूँ कि मैंने कुछ लोगों को हमेशा देते देखा है और कभी नहीं सुना कि उनका कम हुआ है। वजह, वो एक हाथ से देते हैं और 2 फरिश्ते सारी रात उसको दुआ देते रहते हैं कि अल्लाह इसको और दे दे। और सिर्फ रात को देते हैं नहीं, दिन को भी दुआ करते हैं फरिश्ते उनके लिए, अल्लाह ताला इनको दे, जो सुबह में करता है या शाम में। मुराद ये कि जब भी करता है, देने वाले का कभी कम नहीं होता। मा नकसत सदकतुम मिन मालिन। अल्लाह के नबी ने जो 3 चीज़ों पे कसम खाई थी उनमें एक चीज़ ये थी, सदका देने से माल कम नहीं होता। और वो कहते हैं ना कि कभी चोर ही के घर में लाइट नहीं जली, जिसके घर का सारा भी कोई ले जाए कुछ साल बाद अल्लाह उसको फिर सब दे देता है। याद रखिएगा इस बात पे, अपने लिए भी अमल रखिए कि जब फरिश्ते दुआएं करेंगे किसी नेकी के करने पे तो उसमें कमी कैसे होगी। चलिए अब चलते हैं 15th पॉइंट। आपकी शीट का पेज नंबर 3 बिल्कुल शुरू से है, इसमें अब ऑपोजिट टॉपिक है। अभी तक क्या पढ़ा? फरिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं, अब ऑपोजिट है। और लानत को लफ्ज़ समझिएगा, यानी ये टॉपिक है कि फरिश्ते लानत भेजते हैं, और इसकी दलील शुरू में लिख लीजिए, अल बकरा 161 162। लानत क्या होती है? ये लफ्ज़ हमारे यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता ना, तो मैं पहले इसको ज़रा सा वाज़े करूँ। लाना का लफ्ज़ है ना, लाम आइन नून, बौद के मानी में है। बादा, लाना इज इक्वल टू बादा, और बादा क्या होता है? बौद, दूरी। तो अल्लाह की रहमत से दूरी को लानत कहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे। किस किस के लिए करता है? अब यहाँ वो सब पॉइंट्स नोट कीजिएगा और एक एक को पढ़ते हुए दुआ करें कि अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें इनमें से ना करे। नंबर एक, अल्लाह ताला की तालीमात का कुफर करने वालों पर। और आप आयतों के नंबर ही सुनकर समझ जाएंगे कि ये किस कौम का जिक्र है। सूरत बकरा 161 और आले इमरान 86 87। नेक्स्ट, अहद तोड़ने वालों पर। सही मुस्लिम 1370। दुआ करें मैंने किसी से वादा करके तोड़ना नहीं है। देखिए ये जो हम नियत करके किसी को कोई उम्मीद दिला देते हैं ना, प्लेजिंग तो एक बड़ी बात है, सिर्फ होप, वादे में उम्मीद होती है, वादा भी ना उम्मीद। आप आपने किसी से कमिटमेंट की और तोड़ दें, किस बात पे? उससे अच्छी चीज़ नज़र आ गई, मंगनी की किसी जगह, बच्चे की, फिर उससे अच्छा कोई रिश्ता आया, अच्छा पहले को जवाब दे के आपसे कर लेते हैं, नहीं कर सकते, इस्लाम में ये पसंद नहीं। इसी तरह से मुख्तलिफ कमिटमेंट्स में इंसान बंधा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अल्लाह ताला के कानून के निफाज में रुकावट पैदा करने वाले पर। जी, निसाई 4790। यानी अल्लाह का कानून किसी जगह नाफिज हो सकता है लेकिन लोग रोड़े डाल रहे हैं, नहीं, इससे तो हमारे मुफादात ख़राब हो जाएंगे, फिर तो हमारी चेकिंग्स होगी। तो याद रखिए ऐसी अथॉरिटीज़ को फरिश्तों की तरफ से बददुआएं मिलती हैं कि ये अल्लाह का निज़ाम नाफिज नहीं करने दे रहे, और दुआ कीजिए अल्लाह हमारे मुल्कों में इस्लाम को नाफिज कर दे। नेक्स्ट, सहाबे कराम को गालियां देने वालों पर फरिश्तों की तरफ से बददुआएं होती हैं, यानी लानत को आप यहाँ बददुआ भी कह सकते हैं। जामे सगीर 6285। नेक्स्ट, अपने भाई के खिलाफ असलहा उठाने वालों पर। सही मुस्लिम 2616। मना है, इजाज़त नहीं, क्योंकि आपने फरमाया कि अपने भाई की तरफ हथियार से रुख ना करो, शैतान चिल्ला देगा और पता भी नहीं चलेगा आपको। फिर नेक्स्ट क्या है? अहले बिदत को पनाह देने वालों पर। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बुखारी 1870 और मुस्लिम 5124 नंबर की हदीस है। नेक्स्ट, अपने बाप के अलावा दूसरों से नसब मिलाने वालों पर। इब्ने माजा 2209। यानी औलादों में एक ये भी फितना शुरू हो जाता है कि अपने माँ बाप तो अच्छे नहीं लगते और दोस्त की अम्मी ने उसको बेटा बना लिया, अपने बाप के नसब से दूसरे में जाना। और इसी तरह और भी इसकी बहुत एक्सट्रीम वेज हो सकती हैं, ऐसे तमाम लोगों को फरिश्तों से बददुआएं मिलती हैं। नेक्स्ट, शौहरों की नाफरमानी करने वाली औरतें। बुखारी 5193, सही मुस्लिम 1436। अब इस पे बहुत सारे सवाल उठेंगे दिमागों में, अच्छा हस्बैंड ने कल कहा था मेरे साथ फिल्म देखने चलो, फिर मैंने तो इनकार कर दिया, तो क्या आप फरिश्ते लानत करेंगे? देखिए, ला तअतल्ली मखलूक इन फी मासियतिल खालिक, एक कोड वर्ड है इस दवाजी जिंदगी का भी, यही माँ बाप बच्चों का ताल्लुक है। दुनिया के हर इंसान की बात सुनते मानते वक्त इसको अप्लाई कर लें, ला तअत नहीं है इतात, किसकी? ली मखलूक इन, मखलूक की, किस में? फी मासियतिल खालिक, जिसमें खालिक की नाफरमानी हो। तो बस फिर इंशाल्लाह आपको बात सारी समझ आ जाएगी। ये है बिला वजह आदत ही बना लेना बात ना मानने की, इसको कहा गया। फिर नेक्स्ट देखिए, बुखल करने वालों के लिए रात को दुआ करते हैं, ए अल्लाह रोकने वाले का पहला भी जाया कर दे। ये बुखारी 1442 और मुस्लिम 2336। ऊपर पढ़कर आए हैं ना रहमत की दुआएं, ये उसी हदीस कंटिन्यूएशन है। क्या पता चला, जो देते हैं तो रात को फरिश्ते उनके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, और जो रोक लेते हैं तो फरिश्ते उनके लिए बद दुआएं करते हैं। अब आप जरा से यहां सोचें, फरिश्तों पे और भी बहुत बात हो सकती है, लेकिन इतनी बात सुन के फरिश्तों पे प्यार आ रहा है? और जिस हस्ती ने इनको हमारे कामों के लिए लगाया है, क्या उन पे हमें प्यार आ रहा है? सिर्फ चंद जुमले बोलूंगी जिन्नात और शयातीन पे, क्योंकि मखलूकात में इंसान है, जिन्नात हैं और फरिश्ते हैं। जिन्नात और शयातीन को आप इस तरह से कह लीजिए कि अभी जैसे हमने फरिश्तों की बात पढ़ी है ना, तो फरिश्ते नूर से बने हैं। इसका कोई आपको मैं रेफरेंस नहीं दूंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, जिन्नात पे तो पूरी पूरी बुक्स हैं। इस पे इतना मुझे याद है कि हमने जिन्नात और शयातीन पे एक सेमिनार आज से शायद 10 साल पहले किया होगा फ्लोरिडा में, आज भी वो जगह वो वक्त याद है, टेम्पा फ्लोरिडा में एक पूरी वर्कशॉप रखी थी हमने, जिसमें जिन्नात के मौजू पे हैंडफुल बातें थी। लेकिन बहरहाल ये कि ये टॉपिक वो है जो लोग सबसे ज्यादा सुनना चाहते हैं, जिन्नात, जिन स्टोरीज। तो मुझे पता है मैं सुनाऊंगी तो आप तो ऐसे सुनेंगे, लेकिन मुझे ये करना नहीं है, इस पे यकीन लाना ही काफी है। इससे ज्यादा और मैं आपको क्यों बताऊं, जिन्नों की भी शादियां होती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, वो खाते भी हैं, वो सताते भी हैं, तो मजा तो बहुत आएगा। लेकिन इस कोर्स का मकसद क्या है? अमल। तो जिन्नात के बारे में पता लग भी गया तो क्या, लेकिन वो चीजें जिससे आपको कुछ अमली तौर पर मदद मिल जाए वो मैं 2-3 जुमले बोल देती हूँ। पहली बात है कि जिन्नात हैं, और जिन और शैतान दोनों इकट्ठे कैसे हैं? जिन्नात एक मखलूक है, जिन्ना जन्ना या जिन्नू क्या होता है? छुपी हुई चीज। इसी से लफ्ज जनीन है, फीटस को कहते हैं, क्योंकि माँ के पेट में होता है, नजर नहीं आता बाहर लोगों को तो छुपा होता है। जिन्नात में इंसानों की तरह अच्छे और बुरे भी हैं। इस पे एक रेफरेंस तो आप सूरह जिन का ही लिख लें, काफी सारी बातें जिन्नात ने अपनी जुबान से खुद भी की है। तो जिन्नात अल्लाह की एक मखलूक है, इनका भी हिसाब होगा, ये भी लिख लीजिए, मुकल्लफ है, उनसे सवाल जवाब होगा, हिसाब किताब होगा। नेक्स्ट थिंग ये कि जो कुरान हमारे लिए है ना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत इंसानों के साथ साथ जिन्नों के लिए भी था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों के पास भी गए थे। जिन्नों की जो बुरी किस्म है ना, उसको शैतान कहते हैं, सीधी सी बात है, और उनमें से वर्स्ट जिन जो था उसको इब्लीस कहते हैं, जिसने आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे बात की थी। हमें इसको मानना है, इनकार नहीं कर सकते। जिन्नात पे कुरान में बेशुमार बातें, अहादीस पढ़ी हुई हैं, बहुत कुछ है। और याद रखिए कि सबसे बड़ा जो जिन है ना, जैसे आदम है ना, हमारे अबुल आदम, तो जिन्नों के सबसे बड़े जिन का नाम जान है। ये सूरह हिजर 26:7 में भी इसका जिक्र मौजूद है। फिर जिन्नों के बारे में एक और चीज़ लिख लें कि इंसानों से पहले की मखलूक है, यानी एक जुमला मैं अक्सर तफसीर में भी बोलती हूँ, इंसान तो इब्लीस के मुकाबले में कल का बच्चा था, यानी आदम अलैहिस्सलाम इब्लीस की आंखों के सामने पैदा किए जा रहे हैं, तो जिन्नात पहले से थे, आग से पैदा किया हुआ है। इनकी नस्ल बढ़ाने की क्या सूरत है, इसके बारे में हमें नहीं बताया गया। हाँ, इनकी औलादें हैं, सूरह काहफ आयत 50 नोट कर लीजिए, और औलाद बीवी से होती है। दूसरी बात है, जिन्नात वीरानों, गंदी जगहों और कब्रिस्तानों में रहते हैं। अमल क्या है कि जब भी ऐसी जगह से गुजरे तो दुआएं पढ़ लीजिए, शरूर से बचने की सूरत नास, फलक, और इसी तरह से सूरत बकरा की आखिरी आयतें, आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए। फिर जिन्नात जो है ना, रूप बदल सकते हैं, जिन शक्ल बदल सकते हैं लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल नहीं बदल सकता, यानी कोई जिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में नहीं आ सकता। ये बुखारी 6994 और मुस्लिम 2266 की बात है। फिर जिन्नात भी खाते और पीते हैं, बुखारी की रिवायत है इसमें 59 जिल्द 7 और मुस्लिम 450। फिर इस तरह याद रखिए कि अल्लाह ने इंसान को सबसे अफजल मखलूक करार दिया ना, तो इंसान जिन्नों से अफजल है। सूरत बनी इसराइल आयत 70। जिन्नात इंसानों को सताते हैं, वजह उसकी क्या है? नंबर एक, उनकी बुरी फितरत भी हो सकती है, सरकशी भी होते हैं, और दूसरी बात है जब इंसान उनको सताए। आपने फरमाया कि हड्डी को स्तंजे के लिए इस्तेमाल ना करो क्योंकि ये तुम्हारे जिन भाइयों की खुराक है। इसी तरह दरख्तों के नीचे पेशाब कर देना, हो सकता है वहां जिन्नों का मस्कन हो। तो इसलिए वो बातें सारी जो अहादीस में दी गई उस पर अमल करें तो इंशाल्लाह जिन्नात आपको नहीं सताएंगे। जिन्नों की तख्लीक का मकसद क्या है? सूरह ज़ारियात 56 सारे पढ़ दें। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। तो जिन का नाम तो बल्कि पहले लिया गया, तो उनकी भी तख्लीक का मकसद अल्लाह की बंदगी करना है। फिर जिन्नात भी अल्लाह की किताबों पर ईमान लाते हैं। सूरह जिन 1-2 अहकाफ 30। जिन भी तबलीग करते हैं माशाल्लाह जी। कहाँ लिखी है ये बात? सूरह अहकाफ 29:32। वाकया याद कर ले, सफरे ताइफ से वापसी पे बड़े बोझल दिल से बैठे थे कि आज तो किसी ने बात ही नहीं सुनी, तो अल्लाह ने क्या किया, जिन्नों के एक टोले को भेजा और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बस्ती में ले गए। ये जो सूरत जिन है ना, ये पूरी एक जिन की कहानी है। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सुना देखा वो जाकर अपनी कौम को जाकर सुनाया। तो तबलीग करते हैं। और एक बात याद रखिए कि जिन्नात जन्नत में भी जाएंगे और जहन्नुम में भी जाएंगे। सूरह बुरूज 11 आराफ 179 और अंबिया 94। जिन्नात को भी गैब का इल्म नहीं है, ये भी लिख लें, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे कल्चर में। इसकी दलील सूरह जिन 26 और सबा 14। और जिन्नात की अमूमन दो किस्में होती हैं, नेक और बद दोनों ही वाले बात हैं जैसे इंसानों में होते हैं। फिर याद रखिए कि इबलीस कौन था? ये सबसे बड़ा जिन था जिसने आदम के सामने सरकशी की थी, इस सजदे से इनकार किया था, तकबर किया था। और इबलीस कौन है? शैतान अकबर है, बड़ा है उनका। सूरह कहफ 50 में भी आप पढ़ते हैं। फिर इसी तरह से याद रखिए कि शैतानों से बचना चाहिए। अल्लाह ने इसके लिए सूरह आराफ 27, फातिर 6 और निसा 110 में भी ये बात कह दी। बुरे शैतान इंसान को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, शैतान की पूरी कोशिश होती है कि वो इंसान को बंदगी के आला मर्तबों से गिरा दे, और अल्लाह ने अपने अंबिया और औलिया को बंदगी के दरजात के कमाल तक पहुंचने का मौका देकर एहसान किया है। तो अल्लाह के बंदों के शर और उनकी चालों से बचने के लिए अल्लाह की पनाह लेनी चाहिए। तो बहरहाल शैतान जो है वो आपके मेरे लिए एक बुरा मॉडल है। अब एक चीज और नोट कर लीजिए, शैतान का हदफ क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ शैतान? तो शैतान तमाम इंसानों को काफिर, मतलब हम जिन से शैतान पे आ गए आप कह लीजिए, क्योंकि इसकी भी थोड़ी सी जरूरत थी। शैतान कौन है आज उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। शैतान चाहता है सब काफिर और मुशरिक बन जाएं। सूरत हशर 16 और मुस्लिम 2865। शैतान का दूसरा हदफ यह है कि बंदे को कबीरा गुनाहों और नाफरमानियों में मुबतला कर दे। ये इसकी पूरी वर्किंग स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले बंदे को काफिर बनाना चाहता है, वो ना बने तो मुशरिक बन जाओ, वो ना बने तो कबीरा में डाल दो, मायदा 91 बकरा 169। फिर इबादत से रोकता है, हर वो इबादत जो अल्लाह को प्यारी लगती है शैतान को गुस्सा आता है। मसलन हदीस सुनी भी है, अजान की आवाज आती है तो शैतान दूर भाग जाता है, फिर खत्म होती है तो आके वसवसे डालता है वजू करने वालों में, फिर इकामत की आवाज आती है फिर दूर भाग जाता है, और जो ही वो खत्म होती है तो वापस आके नमाजी को वसवसों में डाल देता है। तो शैतान को अच्छी जगह अच्छी नहीं लगती। सही मुस्लिम 2203 और बुखारी 461 है। फिर इसके बाद शैतान का एक और हदफ है कि इंसान बिदात में मुबतला हो जाए। सुफियान सॉरी एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, कहते हैं कि बिदत इबलीस को नाफरमानी और मासियत से भी ज्यादा पसंद है, क्योंकि नाफरमानी से तो इंसान तौबा कर लेता है लेकिन बिदत से नहीं करता। आप कहिए, वो कहेंगे हम तो इतनी नेकी का काम कर रहे हैं, आप हमें इस पे तौबा की बात करते हैं। फिर इसी तरह नेक्स्ट हदफ शैतान का क्या है? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर से रोकता है। और जो लोग ये काम कर रहे होते हैं ना, उनके खिलाफ लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, ये मौलवी ये दीन वाले ये तो नेक थे, इनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी आप जरा सी टोन मैंने इसलिए बदली है कि कुछ लोग यही महसूस करते हैं, ये सोचते हैं कि जो नेकी की बात करे बस उसको दुनिया की सबसे बड़ी अदालत के कटहरे में खड़ा कर दो। एक बाल दिख रहा था उनका, अस्तग़फिरुल्लाह, उनके स्काफ में से एक बाल दिख रहा था, अल्लाह इनको माफ करे। और वो उसे हिबत कर रही थी, उसके सामने हो रही थी, वो बोली नहीं, बस शुरू हो गए। और बाकी वो, अरे वो बोली, वो जल्दी में याद ही नहीं रहा था, स्लिप के ऊपर शर्ट भी पहननी थी, वो बड़ी भोली है, वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं। याद रखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेकी के काम करने वालों को क्या समझ लेते हैं, अल्लाह अकबर, ये शैतान डालता है, ये शैतान का एक हदफ है। और उस नुकसान क्या होगा कि दीनदार बदनाम हो जाएंगे, तो फिर दीन तो खुद ही बदनाम हो जाएगा। एक आखिरी बात करके मैं आपको आगे लेके चलती हूँ बहुत ही प्यारे टॉपिक पे, ईमान बिल कुतुब। और वो आखिरी टॉपिक क्या है कि शैतान क्या हकीकत में हमारे जिस्म के अंदर भी कोई नुकसान डालता है, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। आज स्ट्रेस, डिप्रेशन, परेशानी और दिस दैट जो चीज़ें भी हैं ना, इन सब को सामने रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत चीज़ें मिलेंगी कि शैतान को अल्लाह ने इतनी भी ताकत दी है कि बंदे को जिस्मानी या रूहानी तौर पे तकलीफ दे सके। मसलन बुरे ख्वाब, जो नाइटमेयर्स होते हैं, जो गंदे ख्वाब होते हैं, ये शैतान की तरफ से हैं। बुखारी 6985 और इब्ने माजा 3154, मेरे हाल यही दो काफ़ी हैं। फिर दूसरी बात है, शैतान घरों में आग लगवा देता है, बिलीव मी कई दफ़ा आग लगती है, उसकी वजह नहीं होती कोई। अबू दाऊद 4369 है। मैं ऐसी एक जगह को जानती हूँ कि इस वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहने के बावजूद पूरी फायर ब्रिगेड आने और कोशिश के बावजूद उनको सोर्स ऑफ फायर नहीं मिला, किसी स्कूल में आग लगी थी रिलीजियस जगह पे, आज तक उनको ना इलेक्ट्रिक सर्किट में कहीं नहीं मिला, कुछ नहीं। आखिर वो यही कहते हैं कि हो सकता है सारा दिन सूरज की धूप शीशे पे पड़ी, फिर वो सारी एक कोने पे आ गई और अंदर कोई बच्चे का खिलौना था प्लास्टिक का, उस पे गई तो वो मेल्ट होना शुरू हुआ और उधर से आग भड़ते गए, पता ही नहीं चलता, शैतान आग लगवा देता है। फिर इसी तरह बच्चा जब पैदा होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी, शैतान उस वक्त आकर उसकी रिब में ऐसे करता है कचोका। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 2366 और बुखारी 3286 है। फिर इसी तरह ताउन, जिसको डायरिया बोलते हैं या पेट का मर्ज जो होता है, ये भी जिन्नों की वजह से होता है, अल्लाह के नबी की रिवायत है जामे सगीर 90 जिल्द 4 में है। हज़रत अय्यूब को जो स्किन डिजीज हुई थी उसकी वजह भी शैतान था, सूरह स्वाद 41। फिर इस तरह कुछ सिस्टर्स का ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, इस्तेहाज़ा बोलते हैं, जिसको आप कह लीजिए कि आउट ऑफ पीरियड्स भी ब्लड आना, कुछ की रूटीन नहीं सेट होती, हर वक्त है कभी नहीं, और अजीब कैफियत है, नमाज पढ़ें ना पढ़ें, पढ़ें तो सुकून नहीं मिलता, ना पढ़ें तो नहीं, तो हदीस में आता है कि इस्तेहाज़ा भी शैतान की एड़ की वजह से होता है। यानी शैतान, उर्दू में एक ख़ास लफ्ज़ होता है हमारे यहाँ, शैतान का चौका है, चूकना कहते हैं ना, चूकता है। तो हमारे अपने उस्ताद ने जब ये चीज़ हमें पढ़ाई थी तो उन्होंने बताया था कि इस्तेहाज़ा चूका कैसे है, कि नमाज चूकती है, पता ही नहीं होता पढ़ूं कि ना पढ़ूं, तो ये भी शैतान की वजह से है। फिर इसी तरह जब हम खाना खा रहे होते हैं तो शैतान हमारे खाने में से हिस्सा लेता है, ख़ास तौर पे आप में से मदर्स विद बेबीज या किड्स, कभी बच्चे के बाएं हाथ में खाना ना दें, एक में लॉलीपॉप है तो दूसरे में आपने कोक पकड़ा दी, बर्गर है, ये है, बाएं हाथ से जो चीज़ खाएगा आपका बच्चा या आप खाएंगे, शैतान उसमें हिस्सेदार होगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, बहुत सारी हैं, मैं एक बोल देती हूँ, इनमें से कोई भी जाके देख लीजिएगा 2012 और सिलसिला सहीहा में 175 जिल्द 1 में है। लेफ्ट हैंड से नहीं खाना चाहिए। फिर इस तरह मिर्गी, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी, जी बिल्कुल, एपिलेप्सी भी हदीस के मुताबिक शैतान के छूने से होती है, और शैतान बंदे के अंदर भी दाखिल हो जाता है, पता है आपको कैसे, लंबे नाखून और फालतू बाल, अनवांटेड हेयर आप 40 डेज से ऊपर रखे, और शैतान बंदे के जिस्म में जाता है। ये बात बहुत अहम है इसलिए बोल रही हूँ, ये मैंने उस मैजिक के टू जी और उसमें भी बोली थी, एक्सट्रीम रवैयों में, व्हेन यू आर सो हैप्पी, सो सैड, गुस्सा, आपने कभी देखा, अभी ये ग्लास पड़ा, अल्लाह ना करे मुझे कभी ऐसा गुस्सा आया, जिंदगी में नहीं आया, कई लोग हैं अपने पास पड़ा बर्तन पकड़ कटक करके मारेंगे, ये शैतान करवा रहा है। एक्सट्रीमिज्म, एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीम, बहुत खुशी में देखिए आज गुनाह होता है, कहते खुशी का मौका है, नाचेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, फिर इस तरह बहुत गम में लोग डिप्रेशन में जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा बच्चा क्यों मर गया, तो ये शैतान एक्सट्रीम रवैयों में हमारे ऊपर आता है। फिर इसी तरह जो शैतान का सबसे बुरा काम है, मौत के वक्त जब हम दुनिया से जाने वाले होते हैं ना, तो बंदे को मखबूतुल हवास कर देता है, अगर ये सारी प्रिकॉशंस ना ली हों पहले से, तो मौत के वक्त भी शैतान जो है वो आपको आकर कुछ ऑफर्स देता है कि मेरी बात मान लो। और ये निसाई 5104 नंबर की हदीस है, आपने इमाम की बात सुनी होगी, या इमाम अहमद थे या इमाम मालिक थे, मौत की बेहोशियों में डूब डूब जा रहे हैं और आवाज़ दे रहे हैं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, फिर थोड़ी सी हालत समर गई, पूछा कि क्या कह रहे थे, कहा मेरे पास शैतान आया था और कहने लगा है, मालिक मैंने सारी जिंदगी तुझे बहकाना चाहा पर तू मेरे हाथों से निकल गया। तो मैं उसको कह रहा था अभी नहीं क्यों, कि मैं भी जिंदा हूँ तो मौत तक ये। और इसकी कमिटमेंट तो देखिए, हम तो थोड़े साल काम करके छोड़ देते हैं, बहुत कर लिया और अब क्या करना है। तो शैतान बच्चे के पैदा होने से पहले वहां बैठा होता है, पैदा होते ही बच्चे को कुचोका लगा रहा है, और दुनिया से जाते वक्त भी आपके पास होता है कि किसी तरह ये बंदा मेरे काम आ जाए। सारी जिंदगी शैतान और इंसान के दरमियान मार के रहते हैं, खून की तरह दौड़ता है हमारे जिस्म में। मुस्लिम की रिवायत है 2815 भी है, फिर इस तरह बुतों की बंदगी करवाता है, मुसव्वरी करवाना। सही मुस्लिम की रिवायत जाके खुद पढ़ लीजिएगा 2110, ये जो हाथ से तस्वीरें बनाई जाती हैं जिसको आर्टिस्टिज्म कहा जाता है, ड्रा करके। बच्चों को भी कभी फेसेस ना बनाने दिया करें, आजकल तो अब एक्सप्रेशंस के नाम पे पूरी पूरी गुड़ियाँ और तस्वीरें। देखिए अपनी खुशी के इजहार के लिए कोई चीज़ आप शेयर करें ना, चेक कीजिए उसमें फीचर्स नहीं होने चाहिए। बहरहाल मौसिकी शैतान की मरगूब चीज़ है, मौसिकी की आदत डलवाता है जो कि शैतान का कुरान है। इस पे कुरान में आप पढ़ लें जाके सूरह लुकमान 6:7, बनी इसराइल 64, और इसी तरह हदीस में भी बहुत सारे हवाले मौजूद हैं। और शिर्क तो करवाता ही है, उसमें तो कोई शक नहीं है। कुछ लोग शैतान के दोस्त होते हैं, कैसे पता चले आप में शैतान के दोस्तों में हैं कि नहीं? नंबर 1, शैतान के दोस्त सुन्नत से कभी खुश नहीं होंगे, बिदत से राजी होंगे, उस पे कायम रहेंगे, ये पहली अलामत है। दूसरी क्या है कि शैतान के दोस्त नापाक रहते हैं, गंदे रहते हैं, इनके दिल में किबर, हसद, सुस्ती, रियाकारी, कीना और इस तरह की बातें, और इनकी जुबानें झूठ, ताने, गीबतें, चुगलियां और बदकलामियां करती हैं। आंखें गंदे मंजर देखती हैं, गंदी चीजें देखते हैं, कान गलत चीजें, गंदी चीजें सुनते हैं, हाथों से चिट चैट ही होती रहती है, नापाक कलाम, इनके लिबास गंदे, इनकी जगह, इनकी यानी हर चीज गंदी है। और सबसे बड़ी बात है, अपनी औलादों के पेट में हराम डालते हैं। ये शैतान के सारे हदफ हैं। और मुजयन करता है शैतान का एक बड़ा काम क्या है कि वो गुनाहों को खूबसूरत करता है, बातिल को खूबसूरत दिखाएगा, बुराई के फायदे दिखाएगा, हराम चीज़ों के खूबसूरत नाम के जरिए दिल में नाफरमानी होती है। सच बताएं कि गर्लफ्रेंड का लफ्ज़ आते ही और बीवी का लफ्ज़ आते ही फ़र्क किस चीज़ का है? वो इश्तिहार जो शादी से पहले होती है वो शादी के बाद नहीं रह जाती, गंदे लोगों में, और नेक लोगों में ऑपोजिट होता है। वो पहली चीज़ सोच नहीं सकते, दूसरी में अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाह से ज़्यादा कोई खूबसूरत चीज़ नहीं है दो अजनबियों में मोहब्बत डालने की। तो ये जो अट्रैक्शन है, मैं उस पर मर गया, वो मेरे पे मर गई, या लव है, उसकी लुक्स, ये सब शैतानी बातें हैं। जितना लिविंग टुगेदर का कल्चर है ये शैतान का कल्चर है, और इन सब चीज़ों के लिए शैतान का एक ख़ास तरीका है। फिर एक और बात लिख लें, यकीन करें कि इतना है कि मैं नहीं चाहती कि वक्त ऊपर जाए, लेकिन आपकी मोहब्बत में दिल भी चाहता है कि ये बातें बताऊं कि शैतान का एक और बहुत बड़ा गोल क्या है, नेकी के कामों में सुस्त करते। भागते भागते आप नेकियों में हांफ रहे होते हैं, एकदम आपको सुस्त कर देगा, नहीं, बहुत है, थक गए, नहीं बीमार हूँ, आई वॉन्ट अ टेक अ रेस्ट, अब मुझे कुछ अर्सा रेस्ट ले, नहीं मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, नाउ माई किड्स नीड्स मी। याद रखिए ये इतना होशियार बंदा है, बंदा ही है ना, अल्लाह का तो बंदा ही है, वो बने ना तो बने और बात है, आपको नेकियों में सुस करेगा। पढ़ लें जाके बुखारी की रिवायत 1144 और 1143 भी है, मुस्लिम में भी जाएंगे तो 238 है। फिर इंसान को स्लोली लेकर आता है, नहीं, तुम छोड़ थोड़ी रहे हो, बस थोड़ा सा, बस एक दिन की कमी, नहीं घर से, फिर नहीं ये नहीं, अच्छा मैं नमाज पढ़ूंगी, मैंने छोड़नी थोड़ी है, जरा से ये काम कर लूँ, अच्छा ये कर लूँ, हर अमल पे डाल के देखिए, शैतान आहिस्ता आहिस्ता आपको पीछे लगता है। और जब आप उसकी बात छोड़ते हैं तो आप ला कहते हैं जब उनके दिल टेढ़े हुए तो हमने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। सूरह सफ 5 में भी इसका तذکرہ है। शैतान आपका पहले अकीदा खराब करेगा, फिर शक और शुभों में डालेगा, फिर आपको डराता है, ना 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 ना, आज के दौर में मुसलमान बन के बाहर निकलोगे बहुत खतरा है, और जिहाद का तो लफ्ज़ भी ना बोलना, और दावा तो करना भी ना, और ये ना करना वो ना करना। और शैतान दिल में किस रास्ते से आता है, एक लफ्ज़ का जवाब है, सिर्फ एक, और मुझे अच्छी तरह याद है मैंने सबीलुल जन्नत में वो लफ्ज़ बोला हुआ है, ख्वाहिश। आदम अलैहिस्सलाम क्यों भूले? इबलीस की बात में दो ख्वाहिशें थी ना, सूरत अल अराफ, लंबी उम्र, हमेशा रहोगे और तुम फरिश्ते बन जाओगे। ख्वाहिश के रास्ते शैतान जिस्म में जाता है। आज भी जो लोग ख्वाहिशों के नशे में चूर हैं वही तो गंदी शराब पीते हैं, और ख्वाहिशात ही तो हमें हलाल से हराम की तरफ ले जाती हैं, और इसी तरह से और बहुत कुछ। घंटी शैतान की आवाज़ है, अपने कपड़ों में से घंटियां उतार दें। भैंस और औरत में फ़र्क होना चाहिए, घुंघरू, घंटियां, ये इस्लामी चीज़ें नहीं हैं। अपने बच्चों के कपड़ों से भी निकाल दें, कल जिस चीज़ से उनको रोकना उसको आज ही रोक दें। जी आप लिख लीजिए, सही मुस्लिम की रिवायत है 2114, हर घंटी के साथ एक शैतान होता है, टिक टिक टिक, और दुल्हन आए तो पता चले कि पता नहीं ये क्या हो गया, क्या चाहता है इंसान, कभी आपने सोचा? मैं अक्सर सोचती हूँ कि अक्ल से भी सोचें तो अच्छा नहीं लगता। करें क्या, आखिरी मौजू, शैतान से बचना चाहते हैं ना? तकरीबन 20 पॉइंट्स दूंगी, क्विकली बोलूंगी, लिख लीजिए तो लिख लें, ना लिखें तो बाद में लिख लीजिएगा। करें क्या, नंबर एक किताब और सुन्नत को मजबूती से थाम लें, सूरत अल अनाम 153 और मुस्लिम 81। नंबर दो आऊज़ बिल्ला पढ़ते रहे, शैतान की पनाह में आना, आराफ 199, 202, इसी तरह मोमिनून फिर 97, 98 और अबू दाऊद 775। नंबर थ्री बाथरूम यानी बैतुल खला में जाते वक्त दुआ पढ़ लीजिए, आती है जरा पढ़े मिलके? कब पढ़नी है ये? अंदर नहीं बाहर, ठीक है? बुखारी की रिवायत है 142 और मुस्लिम 122, और बच्चों को भी सिखाएं, पहले पढ़े और इसके साथ अगर आप बिस्मिल्लाह लगा लेते हैं तो फिर अंदर जाके जो वुजू करेंगे इंशाल्लाह वो बिस्मिल्लाह उसको काफी हो जाएगा। फिर इसी तरह घबराहट के वक्त अल्लाह को याद कर लीजिए, अल्लाह की पनाह में आए, अबू दाऊद 3893, तिरमिजी 3528। फिर शैतान से बचना चाहते हैं तो जहन्नुम से पनाह मांगते रहे, सही मुस्लिम 588। दुश्मन के खौफ के वक्त अल्लाह की पनाह में आ जाइए, अबू दाऊद 1537। फिर और कैसे, कभी रास्ते में रुके, जैसे आप कहते हैं ना किसी मंजिल पे उतरे, हम यहाँ से अभी पिछले हफ्ते काफ़ी लंबा ट्रिप करके आए ना, तो जहाँ फिर दिल करता था स्टॉप लेने को तो हम रुकते थे, इसको कहते हैं स्टॉप ओवर। किसी मंजिल पर भी उतरिए तो वहाँ दुआ पढ़िए, आउज़ु बिकलिमात इल्लाहि तामाती मिन शर्री मा खलक, तो ये भी इंशाल्लाह आप शैतान को आपसे दूर करेगा, ये मुस्लिम की रिवायत है 2708। फिर इसी तरह गधे और कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनकर आउज़ु बिल्लाह पढ़ना, बुखारी 3303 और अबू दाऊद 5103। फिर नेक्स्ट है सुबह शाम अल्लाह की पनाह मांगना, बुखारी 6306। ये इसमें आप सुबह शाम की दुआएं पढ़ते हैं सब? आज आप में से कोई ऐसा है जिसने नहीं पढ़ी? मैं आपको बताऊं, फोकस नहीं रहेगा, आप आज दिन में कभी भी जरा सी झुलझुलाहट और गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन महसूस करेंगे ना तो आप समझ जाएं कि आपने दुआएं नहीं पढ़ी, और कभी ऐसी घबराहट हो ना फौरन बुक खोल के दुआएं शुरू कर दें, इंशाल्लाह शैतान भाग जाएगा। फिर अगली चीज़ नौजायदा बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह में आना, किसने मांगी थी याद है, सूरत आल इमरान 36, इन्नी उई जुहा बिका व मिन ज़ुर्रियतिहा, कौन थी? हजरत हन्ना, हजरत मरियम की माँ। तो जब बच्चा पैदा हो ना उसी वक्त उसके बच्चों को भी दुआ दे दें, यानी मरियम के लिए नहीं ईसा के लिए भी मांग ली दुआ, ये कह लीजिए हजरत हन्ना ने, तो बच्चे की पैदाइश के वक्त भी ये दुआ करने की ज़रूरत है, बुखारी में भी ये बात मौजूद है 3371। फिर अगली चीज़ आपको तो कभी नहीं आया होगा लेकिन आपके घर वालों को आया रहता है ये मुझे पता है, और वो है गुस्सा। आया कभी आपको गुस्सा? बाय द वे चले फिर पढ़े आउज़ु बिल्लाही मिनश्शैतानिर रजीम, ये बुखारी की रिवायत है 6038। बहुत सारे हादसे गुस्से की वजह से होते हैं, हमारी जिंदगी के हादसे गाड़ियों में भी होते हैं, हादसे घरों के टूटने में भी होते हैं, हादसे खुदकुशियों की सूरत में भी होते हैं, इसकी वजह गुस्सा, इसीलिए कहते हैं कि गुस्सा हराम है। अल्लाह हम सबको गुस्से से बचाए। फिर सोते वक्त अल्लाह की पनाह मांगना, आयतुल कुर्सी पढ़ना, ये भी शैतान को दूर करेगा, और सूरत बकरा की आखिरी दुआएं, आयतुल कुर्सी पढ़ने की हदीस बुखारी में 3275 है और सूरत बकरा बुखारी 5010। फिर इसी तरह देखिए जरा, ये इतना अहमक है कहूँ कि रात को सोते में भी सताता है, हदीस में आता है कि बुरा ख्वाब, नेक्स्ट पॉइंट लिखे बुरा ख्वाब, बुरा ख्वाब देखने पर भी आंख खुल जाती है ना कभी, तो आपने फरमाया कि ऐसे बाएं साइड जाए ऐसे थुतकारे और औज़ुबिल्ला पढ़ ले तो शैतान फिर या वो बुरा ख्वाब उसको असर नहीं करेगा, ये बुखारी की रिवायत है 6995। फिर शोहर बीवी के ताल्लुक पे जिमा के वक्त अल्लाह की पनाह मांगना, बुखारी की रिवायत है 5165। मैं बड़ी ही माजरत के साथ ये सवाल अक्सर पूछती हूँ, आपसे नहीं पूछ रही, आप खुद से जाके पूछिएगा, शादीशुदा कपल्स में कितने लोगों को ये दुआ आती है और कितने इसका एहतमाम भी करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका अल्लाहुम्मा जन्निबन शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क़्तना, ये दुआ याद होनी चाहिए। आज नस्लों के बिगाड़ की बात तो हम करते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शोहर अपनी बीवी के पास आने के वक्त ये दुआ कर ले तो नंबर एक अल्लाह शैतान से दूर रखेगा, किसको? जन्निबना, दोनों को, उसमें कोई हराम ताल्लुक नहीं होगा, और जो अगर उस ताल्लुक से औलाद मिल गई तो उस बच्चे को अल्लाह अपनी हिफाजत में रखेगा, और क्या चाहिए। तो ये दुआएं अल्लाह के नबी ने किसी हिकमत के साथ हमें सिखाई। फिर इसी तरह से आप देखिए, जब भी कुरान मजीद पढ़ें, शुरू है ना सूरत का तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन बीच में कहीं से भी पढ़ें तो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर इसी तरह मस्जिद में दाखिल होते वक्त भी अल्लाह की पनाह में आना होता है शैतान से, बुखारी की रिवायत है 5018। फिर हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहने की कोशिश करें, शैतान भाग जाएगा, सूरत अल अराफ 201। और सबसे बड़ी बात है अकेले ना रहें, जुड़ के रहें। तिर्मिजी की रिवायत जाके डिटेल में खुद पढ़ेंगे तो आपको ये बात ज्यादा समझ आएगी, 1758। और अबू दाऊद में भी दो जगह यह हदीस मौजूद है, 3842 और 541। क्या है कि मुसलमानों के साथ मिल के रहो। ये जो एक हमारा कल्चर है ना, वन मैन शो, मैं आई मी माई आई माई सेल्फ, ये कुछ नहीं है, बेकार है। वन मैन शो कुछ भी नहीं होता। जब तक आप टीम वर्क में नहीं रहेंगे, आप कभी ड्रीम वर्क नहीं करेंगे। अगर किसी जमात गिरोह के साथ मिल के आप काम करें, थोड़ा कर लेंगे ना, आपको कई जगह सब्र भी करना पड़ेगा, वो बेहतर है आपके अपने 1.5 इंच की मस्जिद बनाने से। ये बात बहुत अहम बात कर रही हूँ, आज मुसलमानों में ये चीज़ें समझी नहीं जाती और उसका नुकसान उम्मत को हो रहा है। हर बंदा 1.5 इंच की मस्जिद है, ग्रुप विद इन ग्रुप, और मैं कर सकता हूँ। हाँ, मुझे ये तो वैसे मुझे भी पता है कि टीम के साथ मिल के चलना सबसे मुश्किल काम है। अना पे चोट, मर्जी पे चोट, सुननी भी पड़ती। आज ही मैंने ये हजरत उमर का और बहुत कुछ पढ़ा है तो मुझे वो बातें याद आ गई हैं। खालिद बिन वलीद एक नंगी तलवार थे और उमर भी थे, कैसे इन दोनों तलवारों को एक नियाम में अल्लाह के नबी ने रखा, इसी असूल के साथ रखा। कभी नहीं कहा उन दोनों ने आपस में कि मैं ज्यादा अच्छा हूं तुम अच्छे हो, तो क्या पता चला, टीम वर्क। बस इतना लिख लें, अकेले काम करने से गिरोह और टीम के अंदर काम करना, चाहे बाहर आपको लग रहा है कि आप इसे ज्यादा करना चाहते हैं, फिर भी बेहतर है, क्योंकि इससे उम्मत को फायदा होगा। और एक चीज, उजलत आजिला तुम्हें शैतान, ये तो मैं हदीस ही बोल देती हूँ, सही मुस्लिम 17:18। और भी रिवायत है कि जल्दबाजियों से बचें, प्रिपरेशन से, तरीके से, सलीके से काम करें। थोड़ा लेट हो जाएगा ना, लेकिन इतना भी लेट ना हो कि मौका चला जाए, और इतना भी जल्दी ना करें कि तैयारी भी ना हुई और आप शुरू कर दे और बाद में कहते हैं आगे जो समझ आता है वो कर लें। इसी तरह कसरत से तौबा इस्तगफार करने से शैतान भाग जाता है, सूरत आराफ 201 और 202, बिल्कुल सूरत का एंड है। तो अल्लाह ताला हम सबको शैतान से भी बचाए और उससे बचा के रखे।